कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों यहोशू की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 2 को देखा था और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से आरंभ करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिताजी, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को आप खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, न केवल हम सुने लेकिन ये हमारे हृदय में कार्य करने पाए और इसके अनुसार हम चल सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी और निराश हैं, जो चिंता और परेशानियों में हैं, जो अपने जीवन से थक कर और परेशानियों से हार कर समाप्त करना चाहते हैं। प्रभु आप उन पर कृपा दृष्टि करें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप उनसे भी आज के दिन बातचीत करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि दो भेदिये जो यरीहो नगर में आए उनको राहाब वेश्या ने बचाया और वे इस बात को जान गए थे कि सारे यरीहोवासी घबरा गए हैं। और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से आरंभ करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इसराइली यर्दन पार करते हैं। आइए हम आगे बढ़ें और देखें। यर्दन पार करके कनान देश में प्रवेश करना एक महान परिवर्तन का आरंभ था। जहां तक इसराइल के विश्वास का प्रश्न है, 40 वर्ष पूर्व इसराइल के वंशजों के सामने ऐसी ही संकटकालीन स्थिति थी और वे चूक गए थे। सीनै के जंगल में जाना और वह भी लाल सागर पार करके वास्तव में विश्वास का काम था, तथापि यर्दन पार करके कनान देश में जाना अधिक विश्वास का काम था, क्योंकि यर्दन पार करने के बाद बचने का मार्ग नहीं था। मेरे मित्रों, प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने के बाद उन्हें वैरियों की सेना, उनके रथ, उनकी शहरपनाह का सामना करना था। संपूर्ण इसराइल ने परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करके यह कदम उठाया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1-4 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यहोशू और इसराइल वंशियों को आज्ञा दी कि वे यर्दन पार करें। उनका यर्दन पार जाना लाल सागर पार करने से भिन्न था। जब उन्होंने लाल सागर पार किया था तब मूसा ने उसे अपनी लाठी से मारा था और पूरी रात उसका पानी विभाजित रहा, परंतु यर्दन पार करना अधिक बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उस समय उसमें बाढ़ आई हुई थी और उनका उसके पार जाने का अर्थ था उसके प्रवाह को रोकना, पानी जो मृत सागर में जा रहा था। मेरे मित्रों, यहाँ एक और नई बात थी। वाचा का संदूक उनसे 3000 फुट आगे जाना था, जो लगभग 1 मील की दूरी थी। उसे याजक उठाकर चलेंगे और यर्दन के किनारे पर खड़े रहेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं, यहोशू 3 अध्याय उसके 15 पद में, और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्यों ही याजकों ने यर्दन के जल में पांव रखा, पानी ऐसे रुक गया जैसे कि वहां बांध बना दिया गया हो। इस ओर एक जल बहकर निकल गया और नदी का तल सूख गया। यह धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा चमत्कार है। वह वसंत ऋतु थी, उस देश में वर्षा की 2 ऋतुएं थी, पतझड़ और बसंत। बसंत ऋतु में अधिक वर्षा होती थी और यर्दन नदी में बाढ़ आ जाती थी। अतः यर्दन के पश्चिम क्षेत्र के निवासियों ने सोचा होगा कि इसराइलियों को यर्दन पार करके आने के लिए अभी कई सप्ताह रुकना होगा। उन्होंने सोचा अभी संकट दूर है, परंतु कुछ के मन में भय था, क्योंकि उन्हें पता था कि 40 वर्ष पूर्व इन्हीं लोगों ने लाल सागर पार किया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहोशु 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद को पढ़ते हैं। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इसराइली स्थल ही स्थल पर उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। मेरे प्रिय मित्रों ध्यान दीजिए, याजक यर्दन नदी के बीच में वाचा का संदूक लिए खड़े रहे जब तक कि सब इसराइली यर्दन नदी नहीं पार कर गए। इसराइलियों ने यरीहो में यर्दन नदी पार की, परंतु पानी आदाम नगर के पास रुक गया। इस नगर का अर्थ क्या है? यह वह नगर है जहां से हम सब आए हैं, अर्थात आदम मानव जाति का पिता है और आदम के द्वारा मृत्यु आई। यर्दन नदी पर जो हो रहा था वह मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का प्रतीक था, उसके क्रूस के कार्य का प्रतीक था। मेरे मित्रों, यीशु का कार्य 2000 वर्ष आगे की ओर ही नहीं पीछे आदम तक गया, मानव जाति के आरंभ तक। यहाँ यही चित्रण दिया गया है। वाचा का संदूक पुराने नियम में यीशु का सर्वोत्तम प्रतीक है, जबकि अन्य अनेक प्रतीक भी हैं जो विशेष एवं विशिष्ट है। वाचा का संदूक इसराइल के केंद्र में 40 वर्ष रहा जब वे जंगल में थे। प्रतिदिन रात को जब वे अपने शिविर में आते थे तो इसराइल के 12 गोत्र संदूक के चारों ओर होते थे, संदूक केंद्र में होता था। अब पहली बार यह यीशु का प्रतीक आगे चलकर यर्दन तक गया और उसमें प्रवेश किया। मित्रों, जैसे पहले कहा जा चुका है कि मसीह हमसे पहले मृत्यु में जाता है, निसंदेह वह हमारे साथ जीवन में भी चलता है। जब हम इस संसार से होकर चलते हैं तब वह हमारे साथ होता है, परंतु वह हमसे पूर्व मृत्यु में गया, और जब हमारे प्रभु ने मृत्यु में प्रवेश किया तो उसने आपके और मेरे लिए ऐसा ही किया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे, और यहाँ पर इस अध्याय का विषय है दो स्मारकों का निर्माण। 12 पुरुषों की नियुक्ति की गई कि यर्दन नदी में से 12 पत्थर उठाकर साथ ले चलें, और दूसरे 12 पत्थर यर्दन में यहोशू ने यर्दन के तल में उस स्थान पर रखे जहां याजक वाचा का संदूक लेकर खड़े थे। यह स्मारक स्वरूप था। जब याजक वाचा का संदूक लेकर वहां से हट गए तब नदी का पानी सामान्य रूप से बहने लगा। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा हुआ है, जब उस सारी जाति के लोग यर्दन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यर्दन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। उन्होंने जैसी आज्ञा दी गई थी वैसा ही किया, और फिर यह हुआ जिसे हम यहोशू 4 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसे यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। ध्यान दें, यर्दन से निकाले गए 12 पत्थर पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए कि इसराइल के पक्ष में परमेश्वर के असीम सामर्थ्य का स्मारक ठहरे। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 4 अध्याय उसके 9 पद में, और यर्दन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। वे पत्थर उस समय वहीं थे जब यहोशू अपना वृतांत लिख रहा था। मेरे मित्रों, इस बाइबल अंश का हमारे लिए महान आत्मिक महत्व है। इसको पूरी तरह समझने के लिए मैं फिलिपियों की पुस्तक का संदर्भ दे रहा हूँ। रोमियो 6 अध्याय उसके 1-4 पद में भी हम पढ़ते हैं, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम पाप में कब मर गए थे? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मेरे मित्रों, आप जानते हैं मसीह आपके और मेरे लिए मरा था, और यही यहोशू की पुस्तक में यहां अभिप्राय है। वे 12 पत्थर मृत्यु के जल में रखे गए थे, वे मसीह की मृत्यु को दर्शाते हैं, और दूसरे 12 पत्थर जिन्हें यर्दन के तल में से उठाकर नदी के पश्चिमी तट पर स्मारक रूप में रखा गया था, वे मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए 2010 वर्ष बीत चुके हैं, और पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 6 में स्पष्ट करता है कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं। बपतिस्मा शब्द का सही अर्थ आज अनदेखा किया जाता है। यह यूनानी भाषा का शब्द है बपतिसो, जिसका पानी से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है पहचान। हमारी पहचान मसीह की मृत्यु में उसके साथ है। मेरे मित्रों, हम उसके साथ मर चुके हैं, परंतु वह मर कर भी जी उठा है, तो हम भी उसके साथ पुनः जीवित हैं, और हम आज जीवित यीशु की पहचान में जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि हम यीशु के साथ जितने अधिक पहचान बनाते हैं, उतनी ही अधिक आत्मिक आशीषें पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस भेद को समझ रहे हैं। हम उसकी पहचान में लीन हो गए हैं। मेरे मित्र, इसराइल वंशी यर्दन पार करने के बाद प्रतिज्ञा के देश के नागरिक हो गए थे। वे अब सदा के लिए उस देश के हो गए थे, और आज भी उन्हें उस देश का यहूदी कहा जाता है। यदि वे वहां ना हो तो उन्हें भटकने वाला यहूदी कहा जाता है। इस सत्य को एक और महान सत्य के साथ जोड़ दें। मेरे मित्रों, जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो उसकी मृत्यु आपकी मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान आपका पुनरुत्थान हो गया। अतः यदि आप इस पहचान से लेश मात्र भी भटक गए, तो इसका त्रासदीपूर्ण अर्थ समझ लीजिए। पौलुस ने इफिसियों की कलिसिया को एक सच्चाई लिखी। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 4-7 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वह आपके पापों के लिए मरा कि आपको जीवन मिले। अब आप जीवित परमेश्वर के साथ हैं। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर के वचन का एक महान सत्य है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पापी हैं और हम नाश हो गए हैं और हमें कोई बचा नहीं सकता है, इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, मेरे और आपके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वह मेरे और आपके बदले में क्रूस पर चढ़ गया, अर्थात मर गया, और मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित है, और वही आपको जीवित कर सकता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वे मर भी जाएं, फिर भी वे जीवित होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, और यह एक महान सत्य है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19-22 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकलकर यरीहो के पूरे सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इसराइली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। मेरे मित्रों, इस गद्यांश से हमारे लिए आत्मिक शिक्षा यही है कि हम अपनी संतान को सुसमाचार का पूरा ज्ञान दें। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने अपने संतान को सुसमाचार की शिक्षा दें। आज हम कई माता पिता अपने बच्चों को सुसमाचार की शिक्षा नहीं देते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चे कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मसीह यीशु का उद्धारक ज्ञान प्रदान करने से बड़ा सौभाग्य माता पिता का और अन्य कोई नहीं है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उसके द्वारा हमारी बेटी ने मसीह यीशु को ग्रहण किया था। मेरे मित्रों, यह माता पिता का उत्तरदायित्व है और यह सच है कि हम बच्चों को उद्धार का आनंद दिलाएं और यह कार्य सिर्फ माता पिता प्रभु के निकटता में रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को प्रभु के डर और भय में बढ़ाना है। यहोशू की पुस्तक 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुन्दर को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। मित्रों, परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए जो किया वह उनके लाभ के लिए ही था, वरन आपके और मेरे लाभ के लिए भी था। उसने यह इसलिए किया कि पृथ्वी के सब लोग जान लें कि प्रभुओं का प्रभु निश्चय ही अति सामर्थी है। परमेश्वर का यह उद्देश्य सजीव पूरा हुआ। ज्यों ही कनान वासियों ने सुना कि परमेश्वर ने यरदन का पानी रोककर इसराइल के लिए नदी में मार्ग बनाया है, त्यों ही उनके प्राण सूख गए। मेरे मित्रों, इस अध्याय में स्मरण योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वाचा का संदूक आगे चलकर यरदन के पानी को रोक देता है और इस बार मूसा की लाठी नहीं थी। याजकों द्वारा वहन किया गया वाचा का संदूक आगे गया। मसीह भी हमसे आगे मृत्यु में गया और आज हमारे साथ इस जीवन में भी चलता है। यरदन मसीह की मृत्यु की प्रतीक है, हमारी नहीं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 अब समाप्त होता है और हम अध्याय 5 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और इस अध्याय का विषय है एमोरियों पर भय छा गया। इस नई पीढ़ी का खतना किया गया, सेनाओं का सेनापति ईश्वर का आगमन। मेरे मित्रों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि खतना का संस्कार पूरा किया गया, अब मन्ना बरसना बंद हो गया और उन्होंने वहां के वासियों द्वारा एकत्र किया गया अन्न खाया। यहोशू के समक्ष यहोवा की सेना का प्रधान प्रकट हुआ। इस समय यहोशू को इस दर्शन की आवश्यकता भी थी। यहाँ पर हमें 3 बातों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। एमोरियों पर भय छा गया। यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। मेरे मित्रों, यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यरदन में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए एमोरियों और कनान वंशियों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इसराइल यरदन पार करके यहां तक आ जाएगा। वे तो यही सोच रहे थे कि इसराइल बाढ़ का पानी उतरने तक वहीं रुका रहेगा। वे निश्चिंत थे कि जब तक इसराइल यरदन पार करेगा उनके पास युद्ध की तैयारी के लिए बहुत समय होगा। अतः उन्हें यह समाचार सुनकर गहरा आघात पहुंचा कि परमेश्वर ने इसराइल को यर्दन पार करा दिया है। मेरे मित्रों, कई बार मैं और आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि शत्रु मुझसे और आपसे काफी दूर है, क्योंकि हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं लेकिन इस संसार का हाकिम शैतान है। हमारे सामने ऐसी बातों को रख देता है कि हम उसमें उलझे रहते हैं और परमेश्वर की उन बातों को ध्यान नहीं देते। लेकिन इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपकी नौकरी, आपका विवाह और ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि वह वही परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं, और वह परमेश्वर आपके उन कठिन कामों को भी पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है कि आप प्रभु यीशु के पास आएं और उसके सामने अपनी सारी समस्याओं को रख दें, अपने जीवन को उसके सामने में उंडेल दें और कहें कि प्रभु, मैं निश्चित रूप से पापी हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, अब तक मैंने बहुत सारी बातों को नहीं जाना था लेकिन अब मैं जान रहा हूँ, पिता परमेश्वर मेरी सहायता करें। मेरे प्रिय मित्र, आप निश्चित रूप से जान लें कि प्रभु आपके समक्ष है, वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। बस आप अपने हाथ को बढ़ाएं और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा और आप विजयी होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप उन समस्याओं से बाहर आएं? यदि हाँ तो अपने हाथों को बढ़ाएं, परमेश्वर की ओर निहारें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस वक्त हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में समस्याओं को देखा है और सोचा कि ये सब कुछ असंभव है, लेकिन आज अपने वचन के द्वारा आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि सब कुछ आपके द्वारा संभव है। जो भी अपने जीवन में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, ताकि आज के इस शाम में इस बात को रियलाइज कर सकें कि वो आपसे प्रेम करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक को अपने जीवन में आने का मौका दें, ताकि हर एक आप में सुरक्षित हो जाए और आपको अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।